ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में भाजपा ने 48 विधानसभा सीटें और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट से 16,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 71,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। उधर जम्मू और कश्मीर में भी सभी 90 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट मिली है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांधरबल दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत दर्ज की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गीता सत्य विकास और सुशासन की धरती ने जीत हासिल की है और सभी समुदायों ने भाजपा को वोट दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई और नतीजे घोषित किए गए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों में से भाजपा वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृहमंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की यात्रा पर लाओस जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी राजधानी वियतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से 6 अरब रुपए की कृषि और पशुधन के नुकसान का अनुमान है। इसका देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से 20 जिलों में धान की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा से 26,000 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। इलायची, गन्ना, फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि इस वर्ष भारत ने आंखों की एक गंभीर बीमारी ट्रेकोमा के खात्मे में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंपा। ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रामक बीमारी है जो आंखों को प्रभावित करती है और संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत में किसी भी UGC या AICTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में अर्थशास्त्र या वित्त पढ़ाने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्य मौद्रिक और वित्तीय अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वास्तविक क्षेत्र के मुद्दों और RBI के हित के अन्य विषयों जैसे क्षेत्रों में अल्पकालिक शोध के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 5 तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र और अन्य विवरण पा सकते हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 60 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।